आप हैं SBS हिंदी के साथ।
नवंबर 2019 में लॉन्च किया गया ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में नवाचार और तकनीक अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने में मदद करने के लिए कुछ चुने हुए क्षेत्र में अत्यधिक कुशल व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्क वीजा लॉयर्स में संस्थापक और प्रिंसिपल इमिग्रेशन वकील क्रिस जॉनस्टन बताते हैं।
The visa has actually grown out of something which used to be called the Distinguished Talent Visa, which was designed to get the top people in their field. And the global talent has broadened the category to include 10 sectors, and it's a bit wider in terms of who would accept. The 10 fields, there's a range, but many of them have a focus on, I suppose, high-tech related industries or new and emerging industries such as the circular economy.
कार्यक्रम को बढ़ावा देने और संभावित आवेदकों और उद्योगों के साथ जुड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने दुनिया भर के विभिन्न शहरों जैसे कि लंदन, शंघाई, सिंगापुर और वॉशिंगटन DC में ग्लोबल टैलेंट ऑफिसर्स को तैनात किया है। भविष्य केंद्रित उद्योग जिनमें ऑस्ट्रेलियाई सरकार अत्यधिक विशिष्ट कौशल वाले उम्मीदवारों को आकर्षित करना चाहती है वो हैं रिसोर्सेज, एग्री फूड एंड एग्री टेक, एनर्जी, हेल्थ इंडस्ट्रीज, डिफेंस, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेस, सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक और एजुकेशन। बिग फोर कंसल्टिंग फर्म के वरिष्ठ प्रबंधक सुबोधि ब्रह्मा की अपने क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हैं।
This global talent visa has two tracks. One is for recent PhD graduates and the other one is for people who have extraordinary experience in their field. So I have been in management consulting for the last 11 years now and the last 5 or 6 years have been around digital consulting. So that was my profile based on which I had applied for this visa.
असाधारण और उत्कृष्ट उपलब्धियों के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रिकॉर्ड के अलावा एक आवेदक के पास एक नामांकित व्यक्ति भी होना चाहिए जो उनकी अखंडता और उपलब्धियों का आश्वासन दे सके। नामांकित व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी निवासी होना चाहिए जो आवेदक के रूप में उसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो। एक ऑस्ट्रेलियाई संगठन भी ग्लोबल टैलेंट वीजा के लिए आवेदक को नामांकित कर सकता है। हालांकि सुबोधि ब्रह्मा का कहना है कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आवेदन कर रहे हैं उनके लिए नामांकित व्यक्ति ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
For me, it was a bit easy because I have my network in Australia, but I understand the other side of the story. When people are not based in Australia, it may be really difficult to find a nominator, but people who are from digital and allied fields, they can also go to ACS, which is like the Australia Computer Society, and request for them to be a nominator, which is an option for offshore candidates.
Global Talent Visa November 2019 mein 5000 वीजा स्थानों के साथ शुरू किया गया था और अब 2020-2021 परमानेंट माइग्रेशन प्रोग्राम में 15000 स्थान हैं। लेकिन माइग्रेशन वकील क्रिस जॉनस्टन बताते हैं कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में पात्रता मानदंडों को कम करते हुए कुछ बदलाव किए हैं।
From the 20th of January 2021, masters by coursework, masters by research, and bachelors with honours graduates were not eligible based on their education alone.
ये नीति परिवर्तन उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्होंने expression of interest तो दिया था, लेकिन उन्हें 20 जनवरी 2021 से पहले इस वीजा के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रण नहीं मिला। अनुदान मानदंड के हिस्से के रूप में गृह मंत्रालय ये भी विचार करता है कि क्या एक संभावित आवेदक उच्च आय सीमा को पूरा करने वाला वेतन कमाता है जिसकी आय इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रति वर्ष $153,600 पर सेट है। सुबोधि ब्रह्मा बताते हैं कि वो आय की कसौटी पर खरे नहीं उतरे, लेकिन उच्च आय सीमा से ऊपर कमाने की अपनी क्षमता का प्रमाण उन्होंने जरूर प्रस्तुत किया।
So in my case, my salary was a little less than the threshold, but pretty close to it. So I think they evaluate the salary part on a case by case basis and they do take a subjective approach, keeping in mind not only what the current salary is but what the earning potential can be given someone's experience and credentials.
क्रिस जॉनस्टन बताते हैं कि नीति के तहत ग्लोबल टैलेंट ऑफिसर आवेदकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे सकते हैं अगर आवेदक का क्षेत्र सरकार द्वारा अत्यधिक वांछित हो।
There is the flexibility within it potentially for people who haven't got that salary to still be selected. But the focus is on those with that salary. This is because there is a priority processing directive which says that those which have a high salary or those that have a job offer at that amount from an Australian employer can receive priority processing and they could potentially be selected a lot quicker.
ये कार्यक्रम पीएचडी ग्रेजुएट्स के लिए भी खुला है. क्रिस जॉनस्टन कहते हैं कि नए ग्रेजुएट्स जो तय आय अर्जित नहीं करते हैं उन्हें अपने आवेदन में वो सब कुछ शामिल करना चाहिए जो उन्हें ये प्रदर्शित करने में मदद कर सकता है कि वो वीजा पाने के बाद उच्च आय पाने की क्षमता रखते हैं.
They need to be able to show that they've got that sort of earning potential. So recent PhD graduates might be able to show that there's a demand for their skills and that they may be able to earn that in the future. So that would be through putting forward market surveys and indications of other jobs that could earn that sort of salary. But those that are relying on future projections or don't actually have that, those earnings, they won't receive the priority and the waiting times seem to be getting much longer in terms of the expression of interest.
ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम एक अंक परीक्षणित वीजा नहीं है और आवेदकों को अंग्रेजी प्रवीणता परीक्षण और औपचारिक कौशल मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता नहीं है. आपको बता दें कि सुबोधी ब्रह्मा ने केवल 2 महीनों में अपना स्थायी निवास प्राप्त किया. वो कहते हैं कि वो इस कार्यक्रम के तहत प्रक्रिया की तेज गति से हैरान थे.
I had reached out to a couple of global talent officers on LinkedIn. They were pretty responsive of the queries, which was good. This is really about attracting people who have the global experience into Australia. So yeah, from an experience perspective, it couldn't have been better than this. And it's definitely a prestigious pathway.
1 जुलाई 2020 से 8 जनवरी 2021 तक गृह मंत्रालय ने ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के कुल 7,469 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त किए. इसी अवधि के दौरान सबसे ज्यादा 277 ईरानी नागरिकों, 174 भारत के नागरिकों, 166 बांग्लादेश, 133 चीन और 103 यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को इनविटेशन प्राप्त हुआ.
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें. SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें.